يا حسين يا حسين يا حسين
يا زاي حسين درس غاي حسين
يا زاي حسين درس غاي حسين
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود بجي محمد وآل محمد اذان محترم سورہ توبہ میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیہ مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صاحبان ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور دوسرا حکم سچوں کے ساتھ ہونے کا. بس اس بنا پر ایمان اور عمل میں ایک گہرا رابطہ اور رشتہ موجود ہے. اگر ایمان ہے تو یقیناً اس کا عمل بھی اس کے ساتھ آئے گا، اور اگر عمل ہے تو اس کے پیچھے اس کا ایمان مستحکم نظر آئے گا. اور کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس عمل سے پہلے انجام دی جاتی ہیں، کچھ چیزیں اس عمل کو انجام دینے کے درمیان آپ اس کو انجام دیتے ہیں، اور کچھ اس کو فنش کرنے کے بعد، ختم کرنے کے بعد انجام دیتے ہیں. پر جو چیزیں پہلے ہوتی ہیں وہ مقدمات کہلاتی ہیں، جو ساتھ ساتھ انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ مقارنات کہلاتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کے بعد انجام دیے جاتے ہیں فنش کرنے کے بعد انہیں مؤخرات کہا جاتا ہے. مقدمات یعنی اس کی بیس کو فراہم کرنا، مقارنات قرن سے ہے یعنی ساتھ ساتھ اس کو انجام دینا. مثلا آپ ایک دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں تو دیوار کھڑی کرنے سے پہلے آپ اس کی بیس و بنیاد بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد دیوار کو جب آپ چناؤ کریں گے، دیوار کو اٹھائیں گے تو ایک ڈوری ہوتی ہے کہ جو اوپر سے لٹکائی جاتی ہے اور جس سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ دیوار جو ہے بالکل سیدھی ہے یا نہیں، وہ شاخص کہلاتی ہے. شاخص یعنی وہ چیز کہ جس سے کسی چیز کے صحیح یا غلط یا ٹیڑھے اور سیدھے ہونے کو ناپا جا سکے. اور جب وہ تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس کی حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے. خداوند عالم نے ہمیں اس دنیا میں ان تینوں کاموں کو انجام دینے کا حکم دیا ہے، اور سادی سی مثال میں دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. مقدمات یعنی ایگزام سے پہلے آپ نے پریپریشن کرنی ہے، تیاری کرنی ہے. پھر آپ ایگزامینیشن میں حال میں آ گئے ہیں، اب آپ تیاری، اب امتحان دے رہے ہیں تو بہت فوکس ہو کے آپ نے تمام آنسرس کو دینا ہے، یعنی یہ مقارنات ہیں، بالکل ایکوریٹ جواب دینا ہے، رول نمبر صحیح لکھنا ہے، جو بھی چیزیں موجود ہیں ان کو صحیح طور پر آپ نے انجام دینا ہے. اس کے بعد جب آپ نے امتحان دے دیا تو اپنی کاپی کو جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر دو تین سپلی آپ نے دی ہیں تو ان کو یا تو دھاگے سے باندھ دیں یا اس کو کسی مضبوط چیز سے کہ وہ گم نہیں ہوں. تو یہ کیا ہے، یہ ہم اپنی زندگی میں یہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور روزانہ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے جن کو ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں. یہی کام اللہ تعالیٰ نے ہماری پریکٹس میں رکھے ہیں کہ ہم انہی کاموں کے ذریعے سے اپنی دنیا اور آخرت کے کاموں کو آگے بڑھائیں. چنانچہ ہر کام کو انجام دینے کا ایک پروسیس ہے، ایک میتھڈ ہے، اور اس میتھڈ کے مطابق اس کو انجام دیا جائے. اچھا، کچھ کام ہوتے ہیں ان کو انجام دینے کا ایک میتھڈ ہوتا ہے. یقیناً میتھڈ جو ہوتا ہے وہ گول اور آپ کی منزل نہیں ہوتی. میتھڈ جو ہوگا کبھی بھی وہ آپ کی منزل نہیں ہوتی، آپ کا گول نہیں ہوتا، آپ کا ہدف نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کیلکولس میتھمیٹکس میں ایکویشن کو سالو کرنے کے لیے مختلف فارمولے لگائے جاتے ہیں. میتھڈ ہے نا، اس میتھڈ سے کریں گے، اس میتھڈ سے کریں گے. میتھڈ کبھی میتھڈ اپلائی کیا جاتا ہے تاکہ اس کو سالو کیا جائے، اور مثلا لیفٹ ہینڈ سائڈ از ایکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ، پروو دیٹ، اور آپ نے کہا کہ جناب یہ ایکویشن سالو ہو گئی ہے. मैंने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के बराबर कर दिया है और मसला हल हो गया। मेथड अप्लाई किया आपने, इस मेथड के जरिए से आप कहाँ जाना चाहते हैं, एक अननोन चीज की जानेब, जिसको नोन करना है आपने, जिसको हमारे यहाँ लॉजिक में कहते हैं कि मजहूल को मालूम करना है। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, अब आपके जहन में क्या आया, गाड़ी ख़राब हो गई, ठीक है ना, क्या चीज़ ख़राब हुई अभी नहीं मालूम, ये अननोन है। नोन क्या है, गाड़ी ख़राब हो गई, अननोन क्या है, क्या चीज़ ख़राब हुई है, अननोन है। फिर आपने इंजन खोल के देखा, पता चल गया आपको, वो जो अननोन था वो नोन हो गया। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को दर हकीकत अकल का सफ़र कहा जाता है। अकल जो ट्रैवल करती है, विजडम जो ट्रैवल करती है, वो नोन से अननोन तक और अननोन से नोन तक आती है, मालूम से मजहूल और मजहूल से दोबारा मालूम तक आने का सफ़र क्या है, अकल का है। ज़िंदगी के तमाम मराहिल में हम देखेंगे हम यही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो हमारा जो मेथड होता है वो कभी भी हदफ नहीं होता, हमारा गोल नहीं होता, हम उसे अप्लाई कर रहे होते हैं। उसी तरीके से दीनी प्रैक्टिसेस में, हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो गोल नहीं है, मेथड है। मसलन नमाज, नमाज हदफ नहीं है हमारा, तवज्जो रखिएगा, नमाज एक मेथड है अल्लाह की मारिफत के हुसूल का, अल्लाह की क़ुर्बत के हुसूल का, एक मेथड ये है। और ये बिल्कुल जामे तरीन मेथड है, यानी इससे बढ़कर परफेक्ट और जामे तरीन मेथड इंसान के पास इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद दूसरा मेथड क्या है, रोज़े का। तीसरा मेथड क्या है, ज़कात का, खम्स का, जिहाद का, तवल्ला का, तबर्रक का, अम्र बिल मारूफ का, अन इल मुनकर का। ये सब क्या, ये मेथड हैं कि हम अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करें। उसी तरीके से दीन इस्लाम जब आगे बढ़ा और आइम्मे ताहरीन अलैहिस्सलाम, सही से कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, बच्चे ना 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 बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करें, बच्चे को, बच्चा जितना खेलेगा उतना ही रहेगा। मिलकर दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। एक और दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इस बच्चों को क्या मालूम कि इसकी वजह से पूरी मजलिस जो है वो आगे पीछे हो गई है। बच्चों की खुसूसियत ये होती है कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। मिलकर दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे एक उस्ताद थे, वो मजलिस पढ़ते, आगा पनाहियान, नाम सुना होगा आपने, अली रज़ा पनाहियान, एक बच्चों के पास आकर उन्होंने गोद में उठा लिया, कुछ देर उससे बातें करते रहे, एक दो मिनट बातें की, उससे फिर कहा कि अच्छा तुम अपने अब्बू के पास जाओ, हमें भी तो कुछ बोलने दो ना। मिलकर दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। उसी तरह दीन जब आगे बढ़ा ना, ये शरीयत के बेसिक जो अहकाम थे वो आ गए। अब क्या हुआ, जब दीन आगे बढ़ा, इमाम हुसैन की शहादत हुई, तो फिर आने वाले आइम्मा ने इमाम हुसैन की आज़ादारी से मुतालिक जो है वो बहुत सारे अहकाम दिए। मसलन आप सजदगा जो इमाम हुसैन की तुर्बत की रखें, इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ना इतना सवाब है, करबला जाना इतना सवाब है, जो करबला जाएगा उसका इतना सवाब है। अब इमाम जिसमें नमाज हदफ नहीं है, हदफ अल्लाह की मारफत है, रोज़ा हदफ नहीं है, रोज़ा एक उसलूब है, एक मेथड है कि अल्लाह की मारफत हासिल की जाए, कब्र क़यामत को याद रखा जाए, सोसाइटी के जो गरीब अफराद हैं उनकी भूख और प्यास को याद रखा जाए, ये सारे क्या हैं, ये तकवा तक के हुसूल के लिए हैं। खुद तकवा भी जो कहा है, यानी हलाल और हराम से बचो, ये भी कोई हदफ नहीं है। इसके ज़रिए से हमें कहाँ तक पहुँचना है, अल्लाह की मारफत तक पहुँचना है, अल्लाह की पहचान, अल्लाह के क़ुर्ब को हासिल करना, वो हमारी असल में क्या है, वो हमारा मकसद है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन और इंसानों को खलक नहीं किया सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत करें, लियाबुदून लियारिफून, यानी वो मुझे पहचाने फिर मेरी इबादत करें। उसी तरह फिर जब दीन आगे बढ़ा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालिक जो है वो बहुत सारी चीज़ें बयान की गई हैं, और उन चीज़ों में एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अरबईन या चालीसवां या चहलुम है कि जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीद बयान की गई है। इमाम हुसैन का चहलुम, इमाम हुसैन की आज़ादारी, इमाम हुसैन का गम मनाना, ये इनमें से कोई भी हदफ नहीं है। देखिए हदफ क्या होता है, गोल क्या होता है, कि जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ आकर आपकी ट्रैवलिंग जो है स्टॉप हो जाती है, वहाँ आपका सफ़र रुक जाता है, फिर आप आगे नहीं जाते। अगर आप ऑफिस से घर जा रहे हैं तो घर आने के बाद आप अपनी गाड़ी को लॉक करेंगे, घर में आके रेस्ट करेंगे, यह आपकी मंजिल है। ये आपका हदफ है, ये आपका एंड पॉइंट था जहाँ पे आपने आ गए। या आपने घर से ऑफिस जाना है तो फिर उसी तरीके से आप जो है वो ऑफिस जाके अपनी गाड़ी को लॉक करेंगे और ऑफिस में अपने काम को अंजाम देंगे। मंजिल वो होती है जहाँ सफ़र ख़त्म हो जाता है। आज़ादारी हमारी मंजिल नहीं है, तवज्जो रखिएगा, आज़ादारी मंजिल नहीं है, आज़ादारी हदफ नहीं है, आज़ादारी एक टूल है, एक आला है, एक वसीला है, एक ज़रिया है, आज़ादारी एक मेथड है जिससे हमें कहीं पहुंचना है, तवज्जो रखिएगा। अगर हमने कभी नहीं होता कि आप सुबह को आपने अपने ऑफिस जाना है, आपने अपने बिजनेस में जाना है, आपने अपने कॉलेज स्कूल जाना है, मसलन आप गाड़ी में या मोटरसाइकिल पर जाते हैं, अब कैसे ऐसा तो नहीं होता कि आप गाड़ी के पास खड़े होकर उसको चमकाते रहते हैं, कपड़ा फेरते रहते हैं, पॉलिश करते रहते हैं, नहीं। गाड़ी का काम क्या है, इसको स्टार्ट करें, इसको ड्राइव करें और अपने मकसद तक पहुंचें, फिर वहाँ खड़ी कर दें। गाड़ी का काम क्या है, वो एक जगह से ट्रैवल करा के आपको दूसरी जगह पहुँचा दें, यही गाड़ी का काम, यही मोटरसाइकिल का काम है, यही मशीनरी का काम है। कभी भी कोई भी चीज़ हमारा हदफ नहीं है, ठीक है ना, यानी ये मशीनरी कोई भी हदफ नहीं है। उसी तरीके से आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हदफ नहीं है हमारा, हदफ नहीं है, हमारी मंजिल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम बस कहते कि जनाब बस आज़ादारी कर ली हमने, अब ख़त्म हो गया मसला, हमने नमाज़ पढ़ ली अब ख़त्म हो गया मसला, अब एक दफ़ा नमाज, दो दफ़ा नमाज़ पढ़ ली काफ़ी है। लेकिन हम नहीं, स्टॉप नहीं करते, हम अगली नमाज के लिए तैयार थे, हम अगली आज़ादारी के लिए, हम अगली मजलिस के लिए, अगले साल के लिए तैयार थे, इस साल अरबईन, अगले साल अरबईन, इस साल चलो, अगले साल चलो। इसका मतलब है कि ये एक मेथड है कि जिसका हमें अप्लाई करना है और उस इक्वेशन को, जो ज़िंदगी की इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है। तो आज़ादारी भी एक मेथड है जिसके ज़रिए से हमें कुछ चीज़ों को जो हमें अननोन है उनको नोन करना है, जो मजहूल है उनको मालूम करना है, जिनकी पहचान नहीं है उनको हमें अपनी इल्म में लेकर आना है। बस इस बना पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो चहलुम है वो एक हदफ नहीं है, वो एक 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 वसीला है जिससे हमें आगे तक पहुंचना है। वो क्या है, वो कैसा वसीला है? बाज़ औक़ात कभी आपने किसी को देखा है कि जो अपने वसीले को अपनी मंजिल बना ले, अपनी गाड़ी को अपनी ज़िंदगी बना ले, क्या वो गाड़ी में आके रहने लगता है, क्या वो गाड़ी में अपना ऑफिस बना लेता है? कोई नहीं, किसी अकलमंद आदमी को ये नहीं कहेंगे कि वो मोटरसाइकिल पे जाता है तो वो अपने उसे मोटरसाइकिल को अपना घर बना लिया और बस वो मोटरसाइकिल पे बैठा रहता है, नहीं। वो मोटरसाइकिल को यूज़ करेगा मकसद तक पहुंचने के लिए या ऑफिस से घर आने के लिए, उसके बाद वो उसको छोड़ देता है, वो घर के बाहर खड़ी होती है, ड्राइंग रूम में नहीं आती, बेडरूम में आपकी गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं आती, क्योंकि उसका काम बाहर तक का था, वो वहीं है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको हम एज अ मशीनरी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनको एज अ टूल ले रहे होते हैं, एक आला और ज़रिया और वसीला ले रहे होते हैं, उससे ज़्यादा उनकी कोई अहमियत हमारी ज़िंदगी में नहीं है। अब अगर कोई शख्स किसी ऐसी चीज़ को कि जो टूल और आला हो और वसीला हो उसको हदफ बना ले, तो आप कहेंगे बेवकूफ़ी है, ये अक्लमंद इंसान नहीं है, ये भाई ये टूल था, ये वसीला था, ये आला था, ये ज़रिया था, इसका काम तुम्हें कहीं पहुंचाना था, तुम्हें ट्रैवल कराना था, तुम्हें मकसद तक पहुंचाना था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो टूल आपको दिया गया है, जो आपको आला दिया गया है, जो ज़रिया दिया गया है, आप उसकी हिफाजत भी करनी है। मसलन नमाज एक आला है, एक ज़रिया है मुझे खुदा तक पहुंचना है, तो मुझे इस नमाज की हिफाजत करनी है। मैंने अगर रोज़ा रखना है, रोज़ा एक वसीला है खुदा तक पहुंचने के लिए, तकवा हासिल करने के लिए, तो मुझे इस रोज़े की हिफाजत करनी है। नमाज की हिफाजत क्या है कि मसलन मैं तहारत करूं, मैं क़िबला रुख खड़ा हूं, जो उसके अहकाम है नमाज से पहले के, ठीक है, गुसल है तो गुसल, वज़ू है तो वज़ू, मकान जहां पे नमाज़ पढ़ रहा हूं वो पाक और मुबाह होना चाहिए, लिबास मुबाह होना चाहिए, ठीक है ना, जो शराइत मौजूद है, फिर क़िरत सही होनी चाहिए, पूरे अहकाम जो रुकन और गैर रुकन उनको अंजाम देना चाहिए, मुझे नमाज की हिफाजत करूँगा ताकि क्या कहें, मैं अपने मकसद तक पहुँचूँ। रोज़ा भी इसी तरह है कि वो चीज़ें जो रोज़े को बातिल करती हैं मैं उनको अंजाम न दूँ, मैं ज़कात व खुम्स को ऑन टाइम जो है वो मसलन मुश्तहिद और या उसके वकील को मसलन पेश करूँ। उसी तरीके से जिस तरह मैं लिबास पहनता हूँ, लिबास मेरी हिफाजत करता है, मैं लिबास की हिफाजत करता हूँ। गाड़ी मेरे लिए एक आला वसीला है, मैं गाड़ी की हिफाजत करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मसलन हथौड़ा लेके गाड़ी को मारना शुरू कर देता हूँ, नहीं, गाड़ी की हिफाजत करता हूँ, गाड़ी को साफ़ सुथरा रखता हूँ, गाड़ी की ट्यूनिंग कराता हूँ, गाड़ी को धोता हूँ, गाड़ी को क्लीन करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ। उसी तरीके से जिस तरह हम दुनियावी चीज़ों की दर हकीकत हिफाजत करते हैं और उनको एज अ आला और टूल लेकर अपने मकसद तक पहुँचने, आज़ादारी भी इमाम हुसैन का चेहलुम भी एक ज़रिया है, हमें इसकी हिफाजत भी करनी है और इसके ज़रिए से आगे तक पहुँचना है। खूब आगे कहाँ तक पहुँचना है हमें? हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़र्जहु शरीफ के इनकलाब तक, इमाम के इनकलाब तक पहुँचना है, इमाम के इनकलाब से मुत्तसिल होना है और फिर इमाम का साथ दें। मुत्तसिल होना नहीं है, सिर्फ देखना नहीं है इमाम को, इमाम को चूमना नहीं है, इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़नी है, इमाम का साथ देना है। तारीख तशय्यु में आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ अइम्मा ताहरीन ने स्ट्रगल की, जद्दोजहद की, मूवमेंट चलाई, वहाँ पे एक टीम थी उनके साथ, ऑपरेशनल टीम थी, असहाब थे, चाहने वाले थे जो उनका साथ दे रहे थे, उनके कामों में उनका हाथ बटा रहे थे, न ये कि उनके रास्ते की रुकावट बन गए। थे कुछ लोग जो रास्ते की रुकावट बने, लेकिन क्या हुआ, आइम्मा ने उनको पसंद नहीं किया, आइम्मा ने उनको पसंद किया, आइम्मा ने उनकी हिमायत की, आइम्मा ने उनके बारे में ज़बान खोली और अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो उनके हदफ की राह में उनके मददगार थे, हेल्प करने वाले थे, मुआविन थे, उनकी दर हकीकत उस हदफ तक, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आइम्मा की मदद करने वाले थे। तो हमें भी इमाम ज़माना के इनकलाब तक पहुंचना है, लेकिन हमें से पहुंचना नहीं है, हमें सिर्फ अस्सलाम वालेकुम या साहिब ज़मान नहीं कहना है, बल्कि हमें क्या करना है, इमाम का ऐसा मददगार बनना है कि हम इमाम के मकसद को अमली जामा पहनाने में किरदार अदा कर सकें। बिल्कुल दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस इस वक्त तशय्यो में, मकतब तशय्यो में अरबईन एक ख़ास खसूसियत का हामिल होता जा रहा है, तवज्जो रखिए। क्यों? इसलिए कि अरबईन ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत जामे तरीन शख्सियत है, नवासे रसूल हैं, जनाब ज़हरा और अमीर मोमिनीन के फ़र्जंद हैं, इमाम है, मासूम है, और फिर आपकी शहादत पे एक मज़लूमियत है। ये मज़लूमियत जो है हर जिंदा दिल और बेदार ज़मीर इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहेगी, जज्ब करती रहेगी, खींचती रहेगी। इसको रसूलुल्लाह ने फरमाया, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीना लन तबरदा अबदा। इमाम हुसैन के कत्ल और शहादत में अहले ईमान के दिलों में ऐसी हरारत मौजूद है जो कभी सर्द होने वाली नहीं है, और सिर्फ अहले ईमान से, अहले ईमान ही नहीं, जो जिंदा दिल इंसान होगा, जिसके दिल की ज़मीन इस काबिल होगी कि उसमें ईमान आ सके, ख्वाह काफिर और मुशरिक ही क्यों ना हो, तो वो जो रखेगा वो इस तरफ आके रहेगा। हर ज़मीन में हर चीज़ काश्त नहीं होती है, उसके लिए ज़मीन को तैयार करना पड़ता है। उसी तरीके से इमाम हुसैन की हरारत इश्क और कत्ल की हरारत हर मोमिन के दिल में मौजूद है। इसको कहा गया है, ये चीज़ जो है वो इस वक्त अरबईन इस वक्त यूनिवर्सल दर हकीकत एक आलमगीर हैसियत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया मुतवज्जा। आज से 15 साल पहले अरबईन इस तरह नहीं होता था, मशी या वॉक इस तरह नहीं होती थी, बहुत कम लोग जानते थे, करने वाले करते थे, जाने वाले जाते थे, लेकिन क्या है, गुज़िश्ता 15 सालों से ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट और तहरीक में तब्दील हो गया है। और मकसद क्या है, देखिए ये वसीला है, ये आला है, ये टूल है, इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। हमने ऐसे नहीं करना कि यार हमने 3 दिन की जर्नी करनी है, सफ़र करना है, वहाँ जाके देखेंगे, वहाँ जाके फिल्माएंगे, कैप्चर करेंगे। बहुत लोग होते हैं वो सिर्फ जाके मसलन मोबाइल से तस्वीरें ले रहे होते हैं, वो जाके खाने के स्टॉलों पे खड़े होते हैं, चाय के स्टॉल पे खड़े होते हैं, वो सारे किस्म के लोगों के जो भी एक्शंस होते हैं और आमाल होते हैं उनको पिक्चराइज कर रहे होते हैं, उनका मकसद ये होता है। लेकिन हमें सिर्फ ये नहीं करना है, ठीक है कि ये भी करें आप, जो करने वाले जिनकी फील्ड है वो करें, उसको भी विजुलाइज़ करें, उसको फिल्म बनाएं, उसको ऑडियो में लेकर आएं, उसको पोस्टर में लेकर आएं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मकसद ये नहीं है कि हम इमाम हुसैन की इस तहरीक को, अरबईन की इस तहरीक को सिर्फ जो है वो तस्वीरों तक महदूद कर दें या ऑडियो वीडियो तक महदूद कर दें। नहीं, मकसद क्या है कि इस तहरीक के ज़रिए से अपने आप को, अपने दिल को, अपने कल्ब को, अपने 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 पूरे वजूद को आमादा तैयार करें। कि आप देखते हैं कि हज़ारों लोग जो है वो जा रहे होते हैं, कभी भी आपने ख़ुद आप देखेंगे ना, ये ट्रैवलिंग जो है ये भी एक वसीला है ना कि आप इमाम हुसैन के हरम तक पहुँचे, नजफ से मसलन आप करबला पहुँचे। ऐसा तो नहीं होता आपको कोई चीज़ अच्छी लगी आप वहीं बैठ के चलो दो दिन यहाँ रुक जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। आप कहते थोड़ी देर रुके चलो भाई, चलो अगले पोल पर जाना है, अगली मंजिल पर जाना है, फ़लाँ पोल पर हमें मिलना है, ऐसे ही होता है ना। जो लोग अरबईन पर गए उनको मालूम है, और जो नहीं गए इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह ताला उनको अगले साल अरबईन की ज़ियारत नसीब फरमाए। मिल के दुरूद भेजिए मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। तो इस अरबईन के ज़रिए से क्या है, हम एक तहरीक चला रहे हैं जिसमें हज़ारों लोग एक सिमत, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये है खूबी, ये है खसूसियत अरबईन की। हज़ारों लोग, लाखों लोग क्या है, एक एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक डायरेक्शन में जाना, चलना, मूवमेंट कदम ब कदम। और अच्छा, सिर्फ एक कबीले के अफराद नहीं है, एक कौम के अफराद नहीं है, एक मुल्क के अफराद नहीं है, एक रंग व नस्ल व निजात के अफराद नहीं है, हर जबान के अफराद, हर नस्ल के अफराद, हत्ता हर मजहब व दीन के अफराद भी उसमें शामिल हैं। यानी जामियत जो है वो आप देखें, सिर्फ मुसलमान नहीं, शिया नहीं, बहुत सारे लोग, हत्ता क्रिश्चियंस भी थे, बहुत से ऐसे लोग जो आए थे अरबईन को फिल्माने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, कि इसको कैप्चर करेंगे, दिखाएंगे, ले जाएंगे। क्या हुआ कि उनको बशारत हुई और उन्होंने मरऊब हुए, मुतासर हुए, और जो है वो वहाँ पर उनका इंतकाल हो गया और वो शिया हो गए। फिर उन्होंने वसीयत की कि हमें उसी जगह दफनाया जाए ज़ायरीन के रास्ते में जहाँ पर हमारा इंतकाल हुआ है। और बहुत सी ऐसी खबरें आपको मिलेंगी यूरोप से ताल्लुक़ रखने वाली। जब मैं गुज़िश्त दो साल पहले गया था तो मुझे पोल नंबर तो याद नहीं, एक ईसाई खातून थी, प्रोफेसर थी, उसकी खबर वहाँ मौजूद थी, उसकी पूरी बायोग्राफी वहाँ लिखी हुई थी। लोग आते हैं अभी यूएस की या किसी और यूरोपियन कंट्रीज़ की खातून की वीडियो वायरल हुई है, वो अपने मुल्क के झंडे के साथ आई है और इमाम हुसैन के हरम में आकर वो इंग्लिश में ख़िताब करती है, उसको ले जाते हैं ऊपर से ले जाकर वो सामने ख़िताब कर रही होती है, वो इंग्लिश में वो ख़िताब कर रही है जिसमें वो कह रही है कि इमाम हुसैन मैं आपको सलाम पेश करने आई हूँ। वो ऐसे लोग मौजूद हैं। तो कह रहे कि जामियत कितनी है कि हर मुल्क, हर नस्ल, हर नजात के लोग मौजूद हैं। हदफ क्या है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो मुसलसल हीट दे रहे हैं, हरारत दे रहे हैं, गर्म रखे हुए हैं हर मोमिन को, हर आशिक को, हर इंसान को, हर हुर्रियत पसंद को जो आज़ाद रहना चाहता है, जालिमों से आज़ाद रहना चाहता है। ये जो इमाम हुसैन ने कहा कि मैं मौत को सआदत समझता हूँ और जालिमों के साथ ज़िंदगी को आर और ऐब समझता हूँ, ये दुनिया का बहुत बड़ा कौल है। इतनी खूबसूरती है इस कॉल में, मैं सोच रहा था क्या इमाम हुसैन जुमला कहा है, वाकई इस पर यानी अशरा होना चाहिए कि इमाम हुसैन एक जुमले में, एक जुमले में जो है वो कितनी खूबसूरतियाँ समेट दी। तो मकसद क्या है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा, लेकिन मकसद क्या है इमाम हुसैन के रोज़े तक पहुँचना नहीं है, इमाम ज़माना के इनकलाब तक पहुँचना, फिर उनकी मदद करनी है। अच्छा, अब इस सफ़र में क्या हो रहा है, इस जर्नी में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं स्टॉल लगे हुए, लोग साल भर कमाते हैं, पूरे पूरे ख़ानदान, कई कई अफराद फैमिलीज कमाती हैं ताकि अरबईन के रास्ते में ख़र्च करें। इस साल जब कोविड-19 की वजह से ज़ायरीन की तादाद कम हुई तो आपने देखा कि वही इराकी बॉर्डर्स पर बैठकर जो है गिरिया कर रहे हैं, कहाँ हैं हुसैन के ज़ायर, आओ हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं, तुम्हारे खिदमत गुजार हैं, रो रो के दुआ कर रहे हैं। अरे कैसे कैसे मनाजिर देखने में आते हैं, लोग अपने कुल कायनात लेकर आते हैं, कोई टिश्यू पेपर लेकर आता है, कोई पानी का गिलास लेकर आता है, इल्तिमास करेंगे आपसे, आओ हमारे पास, आओ हमारे घर चलो, आओ हम तुम्हारे कपड़े धोएंगे, पैर धोएंगे, तुम्हारी खिदमत करेंगे। और जब हम 2 साल पहले गए थे तो इस साल नहीं, इससे पिछले साल, तो कहते थे हमारे घर वाईफाई भी है। अब चूँकि बहरहाल एक ताल्लुक होता था ना, घर वालों को इतला देनी है, परेशान नहीं हो। और वहाँ पर चूँकि जो सिग्नल्स के लिए जो उन्होंने टावर लगाए थे कदम कदम पे ईरान की गवर्नमेंट ने, वो ना काफ़ी होते, तब लाखों लोग हैं एक सिग्नल पे आप खड़े हो जाएंगे तो वो लिमिटेड अफराद को सिग्नल दे सकता था। तो कहते आओ भाई हमारे घर आ जाओ वाईफाई, अब लोग कहते चलो जी वाईफाई के बहाने चले जाएंगे। तो कहने का मकसद ये कि यानी इस तरीके से लोग अपनी ईसार कर रहे हैं, अपनी कीमती तरीन चीज़ को दे रहे हैं। ये चीज़ जो है ये दर हकीकत ये हमें जो है वो तैयार कर रही कि अपनी कीमती तरीन चीज़ को क्या करो, इमाम हुसैन के राह में दे दो। फिर जो आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा सूटकेस लेके गए थे 20 kg का 20 kg का, वो आपने होटल में रखवा दिया, एक छोटा सा बैग आपके है कि जनाब इसमें एक टॉवल होना चाहिए, एक ब्रश होना चाहिए, ज़रूरी वाजिबी चीज़ें एक आध कोई जोड़ा, बस ज़्यादा लेके नहीं चलना है क्योंकि उठाना मुश्किल हो जाएगा। ये ट्रैवलिंग जो है ये आपको रिहर्सल करानी है किसकी, आलम आखरत की, कि दुनिया से इतना सामान लो कि जितना उठा सको। अब आप देख रहे होते हैं बहुत से लोगों को, वो खींच रहे हैं, उठा रहे हैं, उठ नहीं रहा, चल नहीं रहा, पहिया टूट गया, होता ही नहीं होता ऐसा। और फिर जो है वो हम दूसरों को देख रहे होते हैं यार इनके पास तो सामान ही नहीं है, देखो ये क्या है, ये तैयारी करानी है। अलगरज ये कि अरबईन बहुत कुछ सिखाती है, अरबईन की वॉक मशीन बहुत कुछ सिखाती है। मकसद है ये हदफ नहीं है, ये मकसद नहीं है, ये क्या है, हमें पहुंचाना। और फिर जो इमाम इंतज़ार कर रहा है, इमाम का इनकलाब हमारा हदफ है कि वहाँ तक पहुँचना, और फिर इमाम का साथ देना है, ईसार, फिदाकारी, तखवा, कम से कम सामान, कम से कम पे इतफा, जो मिल रहा है ले जाओ, जहाँ जगह मिली सो गए, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ फला नहीं है, यहाँ आराम नहीं है, आसाइश नहीं, जहाँ जगह मिल गई आप सो गए, यूँ मलंगाना ज़िंदगी होती है ना, कोई टेंशन नहीं है आपको, क्योंकि आपको होता है यहाँ कितना, 4 घंटे सोना है, 6 घंटे सोना है, रेस्ट करना, उसके बाद अगली मंजिल के लिए जाना है, ऐसे ही है ना, उसको घर तो नहीं बनाते ना। ये क्या है, ये दुनियावी ज़िंदगी की प्रैक्टिस कराई जा रही है कि देखो यहाँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करोगे उसके बाद चले जाओगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग की, 2500 ईयर्स आपकी ज़िंदगी थी। किसी ने हज़रत जब्राइल ने, हज़रत इज़राइल ने आगे पूछा कि अगले साल के लोग होंगे, अगले ज़माने में जो 60-70 साल के, तो आपने इतनी बड़ी उम्र गुजारी तो कैसे गुजारी, कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे धूप से उठ के छाँव में आ गया। तो आप जो हैं वो एक रात 4 घंटे 6 घंटे के लिए सोते हैं, ठीक है, और पूरे दिन ट्रैवल कर रहे होते हैं। फिर क्या है, एक लगन है, एक तड़प है, एक स्प्रिट है कि अगली मंजिल, अगला पोल, अगली मंजिल, अगला पोल तक पहुंचना है, भाई वहाँ पहुँच कर वहाँ स्टे करना है। हो तो ये कि सब क्या है, ये हमें ज़िंदगी प्रैक्टिस करा देते। अरबईन दर हकीकत ज़िंदगी हमें सिखाती, ज़िंदगी कैसे करें, और फिर ज़िंदगी अपने लिए नहीं करें, ज़िंदगी इमाम के लिए करें, इमाम के लिए जिए, ज़िंदगी करें सबके साथ करें, इंडिविजुअल नहीं करें। हाँ ठीक है आप इंडिविजुअल कर रहे हैं, इनफरादी हरकत कर रहे हैं, लेकिन क्या है सबके साथ हैं आप, एक बहाव में हैं, एक फ्लो में हैं आप, दर हकीकत ये ज़िंदगी है, ये वो ज़िंदगी है जिसकी तरफ ये करबला और मशी और अरबईन हमें ले जाना चाहता है। ठीक है आप इनफरादी हैं, लेकिन क्या एक फ्लो में आ जाएंगे, बहाव में आ जाएंगे, सबके साथ होंगे, ईसार, फिदाकारी, कम से कम पे कनाअत, जो मिल जाए उस पर इक्तफा। और फिर क्या हदफ क्या है, इमाम की तैयारी। हदफ क्या है, मुझे तमाम अंबिया का की आरजू थी इस्लामी दर हकीकत के इस्लामी हुकूमत बने, अदल इंसाफ की हुकूमत बने, इंसानियत राज करे, जिंदा हो इंसानियत, उसके लिए मामा जमाना के लिए तैयारी करती है। लिहाजा ये वो चीज़ है कि जिसको हमें मुतवज्जह करना है, फिर आने के बाद हमें दर हकीकत अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन करना है ताकि हम वैसी ज़िंदगी गुजारें। ठीक है मैं 3 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन करबला में और नजफ में रह के आ गया, मशी करके आ गया, आने के बाद क्या हुआ, ठंडा, वही मेरा उठना बैठना, वही मेरे औकात, वही मेरी रफ्तार, वही मेरा बिहेवियर, अगर वही है तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। वहां से लेकर आऊं और यहां पे आके अपनी जिंदगी को डिजाइन करूं, यहां के चेंज करूं अपने आप को। वहां तो ठीक है मैं था जैसे भी था सबके साथ था, यहां आके चेंज करूं। बस आपकी जहमत को तमाम किया। ये वो चीज है कि जो हमें समझनी है, ये वो चीज़ है कि जिसको हमें अपने ज़हन व क़ल्ब में उतारना है। बस आपकी ज़हन को तमाम किया कि इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो, वकूनू मअ अस्सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ, इमाम हुसैन के साथ हो जाओ, इमाम ज़माना के साथ हो जाओ। फिर हमें तैयारी करनी है इमाम ज़माना के लिए, अपने आप को चेंज करना है इमाम ज़माना के लिए, रेवोल्यूशन लेकर आना है इमाम ज़माना के लिए। एक मिसाल मैंने दी, अगर इमाम ज़माना यहाँ आए और कहें कि कौन मुझसे मोहब्बत करता है, तो सबसे ज़्यादा कौन हाथ उठाएगा? जवान, जवानों में स्प्रेड होती है। मौला कहेंगे अच्छा ठीक है अपना मोबाइल मुझे दे दो, जी मौला भी देते हैं, मोबाइल निकलेगा और डिलीटिंग का अमल शुरू हो जाएगा, कोई वॉइस, कोई पिक्चर, कोई ऑडियो, कोई वीडियो। मौला क्या कहेंगे? नहीं, कुछ डिलीट किए बगैर मुझे दे दो। अब कितने लोग देंगे इमाम को मोबाइल अपना? मैं ऐसे मोबाइल दे सकता हूँ? जब मेरा मोबाइल पाक नहीं है इमाम को देने के लिए, तसव्वुर करें, खवाब अरबईन पे जाते हैं, आप कहते हैं ना फालतू चीज़ें निकाल दो, कपड़े भी निकाल दो, मुझे नोहे सुनने, कोई और चीज़ नहीं सुननी है मुझे, फ़लाँ क़िलत सुननी है मुझे, फ़लाँ अहकाम सुनने, फ़लाँ सुनना है, ज़रूरी चीज़ें होती है ना। तो अरबईन क्या है? अपने आप को पाक करो, मुख्तसर करो ज़िंदगी के साथ उस सामान को, इमाम के लिए जियो, सबके साथ जियो, सबके साथ हौसला बढ़ाओ। अगर कोई रुक रहा है उसकी मदद के लिए रुक जाओ, तुम भी थोड़ी देर के लिए उसकी मदद करो। ये क्या है? ये ज़िंदगी के वो उसूल हमें सिखाए जा रहे हैं। बस आपकी ज़हन के तमाम की ये है भाई। बातें बहुत सारी थी लेकिन चूंकि मुझे आगे जाना है और मुझे तकरीबन 9:45 का टाइम दिया, 9:30 का टाइम दिया था, गुफ्तगू लेट हो गई, मैं ये इक्तफा करता हूँ। मुख्तसर मसाइल पढ़कर आपसे इजाज़त चाहूँगा। लिहाजा आइम्मा ने बताया कि कैसे ज़िंदगी बसर की जाए। सबसे बेहतरीन ज़िंदगी अरबईनी ज़िंदगी है, हुसैनी ज़िंदगी है, आज़ादारी की ज़िंदगी है, और अय्याम अय्याम शहादत रसूलुल्लाह है, अय्याम अय्याम शहादत इमाम हसन मुश्तबा है। बस चाहता हूँ कि एक वाक़िया ज़िक्र करके रसूलुल्लाह का और इमाम हसन के मसाइब पढ़ूँ। एक दफ़ा इमाम हसन इस्लाम घर में तशरीफ़ लाए, मादरे गिरामी अपने लबों को मेरे दहान पे लेकर आई है। जनाब ज़हरा ने कहा क्या बात है बेटा, क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है? जनाब ज़हरा ने सुना, नहीं बेटा तुम्हारे मुंह से बदबू नहीं आ रही है। रोने लगे, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो ए हुसैन? माँ दिग्रह में आज मैं और भाई हसन नाना रसूल की खिदमत में जब मस्जिद पहुँचे तो नाना रसूलल्लाह ने भाई हसन के होठों को सूंघा और चूमा, और मेरे होठों को नहीं चूमा, मेरे गले को चूमा। शायद मेरे मुंह से बदबू आ रही थी, रसूलल्लाह को पसंद नहीं आया। ठीक है बेटा परेशान है, नाना आएंगे तो हम पूछेंगे। जब रसूलल्लाह मस्जिद से वापस आए जनाब ज़हरा के पास, फरमाया बाबा जान क्या मेरे हुसैन से कोई ख़ता हुई है? जनाब रसूल खुदा ने कहा नहीं बेटा। जनाब ज़हरा ने माजरा बयान किया, रसूलल्लाह रोने लगे, गिरिया फरमाया और कहा कि जिब्राइल ने आके मुझे खबर दी कि ए मोहम्मद आपका यह बड़ा बेटा इसे जहर दिया जाएगा और छोटा बेटा तेगे जफा से शहीद किया जाएगा, तो मैंने हसन के लबों को चूमा है कि इसे जहर दिया जाएगा और मैंने हुसैन के गर्दन को चूमा है कि इस पर तेगे जफा चलेगी। या रसूलल्लाह मेरा सलाम हो आप पर। जब आखिरी वक्त था ना, एक दफ़ा हसन और हुसैन रसूलुल्लाह के सीने पे आकर सर रख के लेट गए। हज़रत अली चाहते थे कि बच्चों को हटा दें, रसूलुल्लाह ने कहा अली छोड़ दो, मैं बच्चों की खुशबू सूंघ लूँ, ये मेरी खुशबू सूंघ लें। मगर मौला अली ने बहुत प्यार से हटा दिया। मैं कहूँ अली ये मदीना है, ये रसूलुल्लाह, यहाँ कोई ताज़िया नहीं मारने वाला कोई नहीं है, मगर करबला में एक बच्ची अपने बाबा के जनाजे पर आएगी, अरे उसे भी जुदा किया जाएगा, मगर कोई तमाचे मारेगा, कोई ताज़िया नहीं मारेगा। बस अदादारो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को तीन बार जहर दिया गया। दो बार जहर देने के बाद तीसरा जहर इतना सख्त था कि इमाम का कलेजा कट गया। अदादारो इमाम ने बुलाया जनाब ज़ैनब को, बहन ज़ैनब दस्त लेकर आओ, खुदा किसी बहन को ये मंजर न दिखाए। हाँ ज़ैनब भी कितने बड़े दिल की मालिक है, कभी बाबा का जख्मी सर देखती है,
कभी माँ पे जलता हुआ दरवाजा गिर रहा है, कभी रात की तारीकी में माँ का जनाजा है, कभी भाई हसन के कलेजे के टुकड़े हैं, कभी हुसैन का सरनों के नेजा पे देखना है। अल्लाह अकबर, तश्त लाया गया, इमाम हसन के कलेजे कट कट के गिर रहे थे। मैं कहूँ बीबी, ये करबला की तैयारी है, आज तश्त में हसन के कलेजे के टुकड़े हैं, अरे कल करबला में इब्ने हसन की लाश के टुकड़े देखने होंगे। बस अजादारो, एक दफा इमाम हसन ने वसीयत फरमाई, एक दफा इमाम हुसैन का भैया कौम जफाकार ने क्या सलूक किया है। इमाम हुसैन जब रोने लगे, इमाम हसन ने फरमाया, अल्लाह यौम का यौम के या बाबदिल्लाह, ए हुसैन तेरा जैसा दिन किसी का नहीं, अरे करबला के मसाइब की कोई बराबरी नहीं कर सकता। गोया हसन देख रहे थे, अरे हुसैन का लाशा पामाल किया जाएगा। बस अजादारो, इधर हसन ने आंखें बंद की, कोहराम पप्पा हो गया, गौसलो कफन हुआ, हुसैन ने अब्बास ने मिलकर जनाजा तैयार किया, बहनों से रुखसत हुआ, जनाजा गया तो सही सालिम था, मगर उम्मत ने रसूल के पहलू में दफन होने नहीं दिया। अजादारो, तीन बार आनी की गई, अरे ऐसी मेहमान नवाजी किसी की तारीख में न हुई। जनाजे को वापस लेकर आए, बहनों ने पूछा, भैया क्या किसी का जनाजा भी घर में वापस आता है। अब जो बहनों ने हाल देखा, सर पीट लिया। जनाब ज़ैनब ने, उम्मे कुलसूम ने, इमाम हुसैन ने मिलकर तीरों को निकाला। अल्लाह अकबर, अरे हसन हुसैन में क्या मुमासिलत है। हसन के जनाजे पर तीर थे और हुसैन का जनाजा तीरों पे था। قبول فرما حاضرین و سامعین و بانیان مجلس کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما، بار الہ اس گھر پہ اپنی رحمت کو نزول فرما، ان کے رزق ایمان و معرفت و محبت اہل بیت میں اضافہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شریک فرما۔ خداوند، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے صحت کاملہ عاجل عطا فرما، خصوصا میری بھانجی جو ٹیومر کے مرض میں مبتلا ہو کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ بار الہ میں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہمیں زیادہ داری کے ذریعے سے، اربعین کے ذریعے سے اپنی زندگی کی اصلاح کرنے اور امام کے لیے اپنی زندگی کو آمادہ و تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تو جواز محمد والے محمد کا، جو مقروض ہیں قرضوں کا عطا فرما، جو مریض ہیں، جو قید میں ہیں، ہمارے مسنگ پرسن حسن آیت اللہ ابراہیم زک زکی، ان کو رہائی عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعمال میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔